कैसे भाप भरे, किस प्रकार से व्यास वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु उस समय कहने लगे, आप मुझे विषय विष्टा से आप मुझे बचाए, आप मुझे चरण में आश्रय दीजिए। सनातन गोस्वामी पाद संपूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु के चरण में अपने समर्पित कर दिया। सनातन गोस्वामी यथार्थ जो गुरु कौन है, चैतन्य महाप्रभु। जथा भी चैतन्य महाप्रभु अनुष्ठानिक रूप से कोई शिक्षा मंत्र आदि नहीं दिया, किंतु यथार्थ सनातन गोस्वामी पाद अपने जीवन मन तन मन सब कुछ चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पित कर दिया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, जब ये समस्त केश आदि मंडन करके और स्नान करके भद्र हो गया और उसमें सनातन गोस्वामी पाद गए और स्नान करके और दाढ़ी और सभी हाथ करके जब लौटे, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के वह घोट कंबल के ऊपर बार बार देखने लगे। उस समय सनातन गोस्वामी पाद विचार करने लगे, चैतन्य महाप्रभु मैंने ये घोट कंबल को देखने ये इच्छा है। तब उस समय सनातन गोस्वामी पाद ने कह दी, गंगा के घाट पर जाकर के एक धोबी के कहने लगे, देखो ये घोट कंबल ले लो और अपना जो है जीर्ण वस्त्र आप मुझे दे दो। उस समय वो धोबी कहने लगे, क्या हमारे साथ आप बहस कर रहे हैं?
धोबी नहीं, कोई ऐसा वो भीख मंगा था, भीख मंगा साधु।
तो उस समय उनको किसी प्रकार से देखकर के अचेत सनातन गोस्वामी पाद उससे और वो टूटा फूटा बुद्ध लेकर गया है। उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक बात कहने लगे, कृष्ण वरिष्ठ कृष्ण कैसे कृपाल, तुम्हारे समस्त जो है पांच में नाम अर्थात इसमें दिखा दे वैरागी किस प्रकार रहना। साधारण रूप से रहना, भालो न खाइए, अच्छी से खाना पीना नहीं करना नहीं चाहिए और अमानी मानद सबके सम्मान यथाजथ सम्मान जे जो वैष्णव चिन्ह लोहिया सम्मान कर जैसे वैष्णव कुल के यथार्थ सम्मान और सदा सर्वदा कृष्ण नाम संकीर्तन के प्रसिद्ध महाप्रभु इसी प्रकार सनातन गोस्वामी पाद के यही सूत्र बताया। इसके बाद सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के निकट एक प्रश्न पूछा कि हमें क्या मरे जाने तापत रहो यहाँ नहीं जाए जाने कोई छेद रहो। बहुत सुंदर कहते गुरु और शिष्य में यही प्रश्न होना चाहिए, गुरु के निकट जाना है तो गुरु के निकट क्या प्रश्न करना है। यह शिक्षा देते हैं जब भी सनातन गोस्वामी पाद कृष्ण लीला में वो साक्षात जो है श्रीमती राधा जी के खस कमरे में जो है लवंग मंजरी है, किंतु चैतन्य महाप्रभु के निकट लोक शिक्षा के लिए पूछ रहे हैं, मैं कौन के आमिर क्या नो मरे जा रहे था पुत्र, क्यों मैं इस संसार में माया के चिताव तरह के द्वारा मैं तृप्तिभूत हो रहा है, इसे उदाहरण के उपाय क्या है। मैंने क्या नाम जा रहे था पुत्र यहाँ नहीं जा रही कुछ हित है मेरे हित और अहित के बारे में आप बताइए। इसके समय चैतन्य महाप्रभु और साधु साधन तत्व पिछु नहीं जाने कृपा करी बहुत सजे कृपा करी बहुत सजे बहुत आपनी। उस समय साधक वस्तु क्या है, साधन वस्तु क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, इसके बारे में सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के रिकॉर्ड पूछ रहे। उस समय महाप्रभु की जन्म करके डॉक्टर आदि पूछे गए साधु क्या होता, जो साधु होते हैं जो सबको होते सब जानते हुए पर भी अपने दृढ़ता के लिए अथवा दैन करके उस महाप्रभु का तथा भी लोक शिक्षा लिए कहने लगे, सनातन तुम जानते तुम अत्यंत प्रवीण है विचार सब कुछ जानते हो तथापि लोक शिक्षा के लिए जब आप पूछ रहे हैं मैं आपको उत्तर देता हूँ। इस प्रकार सनातन शिक्षा चैतन्य चरितमृत सनातन शिक्षा रूप शिक्षा रामानंद संवाद रसयात्रा प्रसंग ये समस्त हमारे गौड़ीय वैष्णव के प्राण कहा जाता है। ये सनातन शिक्षा के विशेष करके किस प्रकार साधक साधन राज्य में प्रवेश करे कि अमित मैं कौन, तब चैतन्य महाप्रभु यह शब्द ने कहा, जिन्हें स्वरूप भय कृष्ण युक्त दास कृष्ण शक्ति भेदाभेद प्रकाश। बहुत सुंदर इन शब्द के लेकर के तो राजी कितने वेद पुराण उपनिषद सच में भरा हुआ है, मानो सागर सागर के जो है वो गागर में भर दिया जी। कहते कि अमित मैं कौन, तब उसने कहते जिन्हें स्वरूप भय कृष्ण युक्त दास जितने प्रकार जीव है समस्त जीव भगवान के नित्य भी नहीं है, अतः ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, हम लोग की जो है यथार्थ परिचय है वो भी भर्तुर पत्र कमल और दासन दास वो भी भर्तुर जो भगवान को देते हैं कृष्ण चंद्र उनके दासन दास हम लोग यही हम लोग यथार्थ परिचय है। जी भजन साधन करते करते गुरु वैष्णव के कृपा से जब शुद्ध सत्य विशेष आत्मा हृदय में जब प्रकट होगा और विशेष करके संदेह के ऊपर संगीत और वाणी के साधन की शुद्ध भक्ति जब प्रकट होगा जीव अपने स्तर पे जो है अनुभव करेंगे तब वो अनुभव कर लेंगे जब मैं कौन हूँ ये चीज। किंतु दास करने पर भी समस्त जीव क्या दास भाव की जीव के गठन के समय उसमें अपने अपने एक भाव समझ जाए कोई दास भाव होते हैं लोग सात सौ पांच सौ लोग कोई मधुर मान के लोग उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु साधारण एक विचार बताया जो जीव समस्त जीव भगवान के दास यही हम लोग यथार्थ बोल रहे हैं। किंतु इस संसार में भ्रमण संसार में हम लोग आ गया अर्थात भगवान के भूल करके आज हम लोग इस माया के संसार में आ गया अपने देहात्म बुद्धि रख करके हम लोग चल रहे हैं। किंतु भगवान की भजन करते करते गुरु आत्मा के कृपा से ये अनुभव होगा कि मैं भगवान की दृष्टि कैसे का इसलिए कहते हैं कृष्ण जीवन सर्व कृष्ण नित्य दास वेदा भेद प्रकाश हम लोग जब तस्वशक्ति से जीव प्रकट हुए और भगवान और जीव में भी भेद भी है अभेद भी है ये समस्त तत्व सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी करके इसको बताया और जीव कैसे संसार में भ्रमण करते हैं दुख कष्ट आदि प्राप्त करते हैं ये समझते हैं कृष्ण ही मात्र प्रसत्त है ये ते चांस तारों सब कृष्ण तो भगवान स्वयं ये समझते कृष्ण तत्व जीव तत्व माया तत्व ये समझते तत्व तथा दी ये सनातन शिक्षा ने बताया एकमात्र वैष्णव ने स्वयं सुन ली वो स्वयं अवतार ही और सब राम आदि जितने भी है सब अवतार ही इसके बारे में सुंदर रूप में इसमें वर्णन किया। समय अधिक हो गया मैं आप बड़ी समय इन चाहता हूँ जिन मेरे समय दो वीडियो आप अच्छी मेरे मन छा मेरे पास दिन की वजह प्रतिदान
बहुत अच्छा स्पष्ट स्पष्ट वक्ता बोलना चाहिए वक्ता को घबरा करके जल्दीबाजी में नहीं बोलना चाहिए टाइम के लिए कोई बात नहीं जितना भी कहे स्पष्ट स्पष्ट रूप में हो सुंदर क्या सुंदर सुंदर हैं उनकी बातें सुंदर है उनके सिद्धांत सुंदर है किसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए घबरा करके बोलने से वो अभिव्यक्ति नहीं होती इसलिए साफ साफ जो वक्त श्रोता लोग उनके भावों को यथाजथ रूप में समझ सके इस रूप में चाहे दो मिनट बोले चाहे पांच मिनट बोले धीर स्थिर से अपने भावों को बना सके। हमारा अंतिम जो क्या है वो मुख में रह जाता है वो उसको साफ से पूरा सेंटेंस साफ साफ होना चाहिए शायद अंग्रेजी में तुम्हारा अच्छा होता है अंग्रेजी में अच्छा होता है हिंदी में छोड़ दिया इसको अभ्यास ठीक है। बेटी सविता वो सनातन गोस्वामी की शिक्षा के संबंध में बोलेगी ठाकुर जी का घर का कोई माला है तो दे दे जारी है मैं सोचा जी तुम क्यों नहीं आई शनि कुमार स्कूटर से गई थी चैतन्य प्रभु नित्यानंद। भगवान ये वही पंडा बसे अच्छे होते थे वृंदावन वाला के। इनको दे दो महात्मा जी को।
गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा मुड़िया पूनम के उपलक्ष्य में गुरु महाराज की आज्ञा से पालन के लिए हम लोग
ब्रजभाषा में
महाराज जी की आज्ञा को पालन करने के लिए मैं तो एक शब्द जानती हूँ इस पिता सभा में बोलने के योग्य नहीं हूँ।
ठहर जाइए।
गुरु की आज्ञा के पालन के लिए उसी में हम लोगों का कल्याण है। जो गुरु वैष्णव से जो कुछ सुना उसी को चरवण चरण के समान पूर्ण तो एक शब्द में अपने भाव को संजलि अर्पित करूंगी श्री रसनाथन को स्वामी के तीनों भाव नीति उपलक्ष्य में। आज श्री सनातन गोस्वामी जी की तीनों भाव नीति सनातन गोस्वामी जी का भी पूर्ण परिचय हमारे पूर्व वक्ता
वृंदावन के पंडा के दिया
वक्ता से आपने श्रवण किया कि सनातन गोस्वामी जी कौन थे, कैसे उनका पूर्व जन्म था, कैसे उनका बचपन का नाम था, कैसे उसे सहवासा की वो लोग वहां नौकरी करे, कैसे उनका साकेत मल्लिक नाम हो गया गुरु गोस्वामी जी का दबिन फास्ट, अंत में उन्होंने साधन भजन के लिए सर्वस्व नछावर करके कैसे वो आए महाप्रभु से कैसे भेंट हुई राम के लिए गाँव में, अंत में प्रयाग तक काशी तक पहुंचा दिया महाप्रभु को, महाप्रभु से वहां भेंट होकर उनका जो वेश था वो भी बदल गया, वैष्णव वेश धारण कर लिया। इसके बाद में श्री सनातन गोस्वामी जी हम जैसे तीन हीन और भक्ति विमुख लोगों के कल्याण के लिए श्री सनातन गोस्वामी जी पूछते हैं, हे प्रभु, हे मेरे आराध्य देव गौ सुंदर, आप करुणा करके बताओ मैं कौन हूँ, किस लिए इस जगत में मैं त्रितापों से जल रहा हूँ और इनसे बचने का क्या उपाय है। महाप्रभु ने ये प्रश्न सुना, महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। क्या जानते नहीं थे सनातन गोस्वामी जी? सनातन गोस्वामी जी के विषय में आप हम ये समझ लें कि सनातन गोस्वामी जी हमारी तरह से कोई प्राकृत मनुष्य नहीं थे, वो तो नित्य सिद्ध परिकर थे, गौर सुंदर के परिकर थे और श्री विश्वमान नंदनी की नित्य प्राण सखी थी लवंग मंजरी। इसलिए उनको अपने की तुलना में मत सोचना, यदि ऐसे सोचेंगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। फिर भी श्री सनातन गोस्वामी जी हम जैसे जीवों पर दया करने के लिए हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं, महाप्रभु हम कौन हैं, किस लिए इस संसार में जल रहे हैं। महाप्रभु ने क्यों प्रसन्न हुए, महाप्रभु की प्रसन्नता का क्या कारण था? महाप्रभु की तरह से गुरु वैष्णव को समझ लीजिए, हम वैष्णव के पास जाए और गुरु के पास जाए और गुरु जी से यही पूछेंगे, गुरुदेव हम कौन है। यदि जब तक हमारे हृदय में ये प्रश्न नहीं उठता है, समझ लीजिए भजन तो भी बहुत दूर है हमसे। भजन क्या करेंगे, किस लिए करेंगे, क्या आवश्यकता है भजन करने की हमारे लिए, ये तो पीछे पता चलेगा। पहले पता करें हम कि हम कौन है। हमको ये बुद्धि नहीं होती, इस बुद्धि को देने वाले सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं आमी की मैं कौन हूँ, के आमी मैं कौन हूँ। इस पर चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, जीवे ने स्वरूप भाई ने की सुधार उसने ने तटस्था शक्ति घेरा वेद प्रकाश स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण चंद्र गीता में उद्धृत है, ममय मानसो जीव लोका जीव भूता सनातना। श्री तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अर्थात मैं ठाकुर का दास हूँ, नित्य दास हूँ। हमारा क्या परिचय है? एक बार अर्जुन से पूछा कि अर्जुन अपना परिचय दो, अर्जुन ने नहीं कहा मैं पांडव पुत्र हूँ या जिसके मेरे बड़े भाई हैं, अर्जुन उससे छोटे हैं, ये भौतिक या उन्होंने बाहर का परिचय नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं एकमात्र हम साधन भोजन कर रहे हैं, इसी परिचय की उपलब्धि के लिए ही तो हम जो भी साधन भोजन कर रहे हैं, किस लिए साधन भोजन है हम लोगों का, इसकी उपलब्धि प्राप्त करें। वास्तव में कहते हम सब लोग हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, क्या हमारी उपलब्धि है? यदि जिस दिन यदि उपलब्धि हो जाएगी, उस दिन हमारी बिगड़ी हुई सारी बातें समझ में आ जाएगी। हमारी बिगड़ी हुई करोड़ों अरबों क्या अनंत असीम सनातन, हम जब से हम लोग आदि अनंत आदि काल से हम लोग भूले आए हैं, जो परिचय वो परिचय याद करने के लिए, उस परिचय की उपलब्धि के लिए हम लोग साधु संग करते हैं, श्रवण करते हैं, भजन करते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं हम कौन है, भगवान के दास अनुदास है। परंतु इस संबंध को महाप्रभु ने बस इतना ही छोड़ दिया इस संबंध के लिए, इसका संबंध और क्या भीतरी है, और क्या इसका संबंध का विराट स्वरूप है, उसके लिए अपने निज पर निज परिकर आचार्य लोगों को अर्थात हमारे गुरु वैष्णव को सौंप दिया कि इसके आगे का जो अधिकारी जीव है उसके जीव का संबंध आप लोग बताइए। आज गुरु पूर्णिमा थी, हजारों के हमारे लाखों गुरु बहन भाइयों ने गुरुदेव की परसों से ही व्यास पूजा हो रही है। व्यास पूजा का मतलब क्या है? गुरुदेव हम जैसे भूले भटके जीवों को लेकर भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं। कैसे संबंध जोड़ रहे हैं? हमारे भारतीय संस्कृति है, जब एक लड़की और लड़का का परस्पर विवाह होता है तो विवाह के समय अग्नि साक्षी करके मंत्र उच्चारण करके पंडित संबंध जुड़वाता है, आज से तुम पति हो और ये तुम्हारी पत्नी है। ऐसे ही गुरु दीक्षा गुरु, आज के दिन तो दीक्षा गुरु का जो महात्म बताया बतला रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, गुरु क्या करते हैं? गुरु वही मंत्र के द्वारा हमारी चुन्नी का पल्ला पकड़ के हमारी आराध्या देवी कृष्ण भानुनंदिनी अथवा जो हमारा स्वरूप है, क्या स्वरूप है गुरु, क्योंकि हम लोगों में तो ये सामर्थ्यता नहीं जो अपने स्वरूप को पहचान सके। जिसके आंखों में प्रेमंजन लगा हुआ है, भगवत अनुभूति है, जिनको भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है, ऐसे लोग ही हम जैसे जीवों की आत्मा के स्वरूप को देखते हैं और उस आत्मा के स्वरूप को देख कर मंत्रों के द्वारा उस स्वरूप को बांध देते हैं कि आज से बेटी या बेटा तुम भगवान के दास हो, सखा हो, या तुम्हारे प्रभु लाला लगते हैं, या तुम्हारे श्री श्याम सुंदर कांत है, प्रियतम भाव है। जो हमारा स्वरूप होता है उस स्वरूप को गुरुदेव देख लेते हैं दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य माने प्रेमा दृष्टि के द्वारा देख लेते हैं और उसी दृष्टि से हमारा संबंध जोड़ देते हैं। यदि जिसका संबंध जितना दृढ़ होगा उतना ही प्रभु के प्रति आसक्ति होगी, ममता होगी, प्रीति होगी और उतना ही संसार का संसार से विरक्ति होगी। ये एक थर्मामीटर है अपनी भक्ति का नापने के लिए। तो आप लोग ने हम लोगों ने महाराज जी की जो पूजा की गुरुदेव की, यही पुष्पांजलि हृदय से दी कि गुरुदेव जो आपने हमारे हृदय में संबंध रूपी बीज जो बोया है वो हमारा आज प्रस्फुटित हो, उसकी हमें धीरे धीरे उपलब्धि हो और आपकी कृपा होगी तो तत्क्षणात भी हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन्हीं भावभीनी श्रद्धांजलि से गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। हे गुरुदेव, जो आपने कृपा करके करुणा करके अनाधिकारी पामर जीवों को, हम जैसे बद्ध जीवों को, जो आपने आयतु की कृपा करके जो संबंध दिया, उस संबंध की हम लोग उपलब्धि कर सके। यही ये चैतन्य महाप्रभु नहीं बतलाए, महाप्रभु क्यों नहीं बतलाए, महाप्रभु ने अपने सेवकों पर ये कृपा करने के लिए सेवक ही मेरा इतना विस्तार कर सकते हैं। इसलिए महाप्रभु ने कह दिया कि वर जी मेरे स्वरूप कृष्णदास कृष्ण मेरा भी प्रकाश। इसी बात को श्री महाप्रभु के निज परिकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री सनातन गोस्वामी जी की कृपा की अनुभूति की और कृपा की अनुभूति करने के बाद में क्या भाव भी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि सनातन गोस्वामी जी के चरणों में दे रहे हैं। वैराग्य दुग भक्ति रसम प्रयत्न पायन मानती सुमंदनम कृपा अंबुदेर परम दुख दुखी सनातन स्तम प्रभु माश्रयामी। हे सनातन गोस्वामी जी, मैं आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं आपके चरणों के आश्रय लेने का अधिकारी नहीं हूँ, फिर भी आपकी करुणा देख कर मैं आपके चरणों का आश्रय ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्या कारण है प्रभु? होने के कारण हम जैसे पावरों पर कृपा करने के लिए फिर भी कृपा करके यहाँ बैठे हुए हैं। क्या है, प्रयत्न से हम लोगों को भक्ति सिखाते हैं, परंतु दुर्भाग्य हम लोगों का उस प्रयत्न को प्रयत्न न समझकर ऐसे ही खो देते हैं। हीरा मणि मिलती है और उसको काल समझकर हम लोग फेंक देते हैं उस मणि को। ऐसी हम लोगों की ये दुर्दशा है। हे गुरुदेव, आपकी श्रद्धांजलि यही पुष्पांजलि हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इसकी हम लोग उपलब्धि हो, इसकी हम लोग कुछ प्राप्ति कर सके। पहले गुरु कृपा को ही प्राप्त करिएगा, तब तो भगवान की कृपा की प्राप्ति के अधिकारी होंगे। हम क्या जानते भगवान की कृपा क्या है, जब तक दुर्वशनों की कृपा की उपलब्धि नहीं होगी, संतों की उपलब्धि नहीं होगी। यही संत की उपलब्धि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी विचार करके अपनी उपलब्धि करके कह रहे हैं, हे सनातन गोस्वामी जी, आपने प्रयत्न पूर्वक बार 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 आपने मुझे जो कैसी भक्ति पिलाई, कैसा रसाला था ये। रसाला बनाते हैं हम लोग, क्या चाहिए, चीनी चाहिए, नींबू चाहिए, पानी चाहिए, केवड़ा चाहिए, सुगंधित डालने के लिए चाहिए, और लिमिट की हर चीज कौन कौन क्वांटिटी में कौन चीज डलेगी तब रसाला अच्छा बनेगा। ऐसे ही हम लोग भी महाराज जी हम लोगों को सिखलाते हैं रसाला। श्री हम लोगों को तो रसाला पीने की अधिकारी नहीं है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं रसाला पी रहे हैं। कैसे रसाला पी रहे हैं, स्थाई भाव के ऊपर विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यवचारी, इन सब भावों को मिलाकर रसाला बनाया है। और रसाला पी कर रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस रसाले की उपलब्धि की और उपलब्धि करने के बाद में कह रहे हैं, रसम प्रयत्न ही कितने प्रयत्न से मुझे पिलाया था। तो कोई पूछता है दास गोस्वामी जी, आपको प्रयत्न से क्यों पिलाया, आपने वैसे ही पी लेते। बोले नहीं नहीं, अभी सुमंधनम, क्या कहते हैं, मैं इसका अंध था, मैं बहरा था, मैं इस रस का नहीं जानता था कि इस रस में क्या आनंद होता है, पीना नहीं चाहता था, फिर भी आज मैंने पीकर इसकी उपलब्धि की है। कैसे पिलाया मुझे सनातन गोस्वामी जी के ने, जैसे किसी एक बच्चे को बीमारी हो जाती है और बीमारी होकर माँ क्या करती है, बच्चे को कड़वी दवाई पिलाती है, पीना नहीं चाहता बच्चा, फिर भी जबरदस्ती मुंह खोल कर उसको दवाई पिलाती है। ऐसे ही सनातन गोस्वामी जी ने, मैं भगवान रोगी होने पर भी मैं ये दवाई पीना नहीं चाहता था, ये वैराग्य जो भक्ति रस को पान नहीं करना चाहता था, फिर भी उन्होंने करुणा करके कृपा करके मुझे पिलाया। ऐसे श्री सनातन गोस्वामी जी को हम प्रणाम करते हैं। सनातन गोस्वामी जी की शिक्षाएं बहुत है, कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, इन सब तत्वों का बड़ा सुंदर विवेचन किया है। सनातन गोस्वामी जी का एक बहुत सुंदर हमारे लिए सिद्धांत, जो उनका भजन साधन कैसा करते थे वो, ये हम लोगों को उद्देश्य रख के भजन करना चाहिए। दिन रात 24 घंटे वो तो कभी लिखा है एक घड़ी या आठ घड़ी सोते थे, नहीं सोते थे, उनका सोना भी रात में गोविंद दिखते थे, दर्शन होते थे उन्हें। कैसे भजन करते थे, श्रीधाम वृंदावन में मदन टेक पर रहते थे, नित्य प्रति पैदल श्री गोवर्धन जाते थे, गोवर्धन की साथ को उसकी परिक्रमा करते थे, परिक्रमा करने के बाद में श्रीधाम श्री मथुरा पधारते थे, मथुरापुरी में माधुरी करते थे, क्योंकि उस समय वृंदावन बसा हुआ नहीं था, जंगल था, यहाँ से माधुरी करके फिर श्रीधाम वृंदावन पहुंचते और रात में भजन करते, प्रातः काल सब चल रहे थे। मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो 100 किलोमीटर रोज चलते थे सनातन गोस्वामी जी, फिर भी इतना चलने पर भी, इतना कठोर परिश्रम करने पर भी उन्होंने इतने ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिसके हम लोग पढ़ने के अधिकारी नहीं थे, अनाधिकारी जानकर अंत में सनातन गोस्वामी जी उन सब ग्रंथों की समाधि थी। इस समाधि का दर्शन आज उनकी समाधि पर ही मिलता है। आप लोग इससे, हम लोग इससे पहचान सकते हैं कि वो इस जगत की वस्तु नहीं है। एक दिन हम राज्य की परिक्रमा कराए दूसरे दिन उठ नहीं सकते, इसलिए सनातन गोस्वामी जी का कैसा एक सेकंड भी शांति माने शून्यता आशा पर तो समर्पण नाम गाने सदा रुचि, कैसे एक एक क्षण को व्यवहार करते थे, एक क्षण भी उनका व्यर्थ नहीं जाता था। इन भावी श्रद्धांजलि से श्री गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव जी के अनुगत में श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में, बेदव व्यास जी के चरणों में, वह आपने पुष्पांजलि देंगे, हे गुरुदेव जो संबंध आपने, जो प्रीति, जो कमला होया है संबंध का, वो हम उसकी उपलब्धि कर सके और धीरे धीरे जिस रस का आप आस्वादन करते हैं उस रस की छटा आप उन्हें याद करते हुए अपने जीवन को यापन करें। पंचायत
इसके बाद में हरषानंद जी ब्रह्मचारी, उनके अवशिष्ट जो नहीं बोले हैं उन पॉइंटों को साफ करके बोलेंगे। आई हैव स्पोकन टू मच इन इंग्लिश एवरीवेयर, आई एम टायर्ड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, सो हियर स्पीकिंग ओनली हिंदी।
तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुरासि, हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै, हे भक्ति योग मस्मति रघुनाथ दास, श्री जीवन गुरु तमंद मति दयान करा। ये सबसे पहले अस्मद्य गुरुपाद वदमो जितेला प्रविष्ट विष्णु बादा शोधर सदस्य से श्रीमद भक्ति से रूप से शुद्ध गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत गुरु साष्टांग धन्यवाद प्रणिपात कर तत्पश्चात अस्मद्य शिक्षा गुरुपाद वदमो आज हमारी बड़ी सौभाग्य है श्री प्यास पूजा महा महोत्सव उपलक्ष्य में उसी प्यास पूजा के अंतर्गत उसी धारा में उसी आमनाय धारा में आए हुए अभिन्न प्यास महाराज जी के अनुगत में हम लोग आज ये प्यास पूजा को मनाने जा रहे हैं। जो प्यास पूजा है, प्यास पूजा का तात्पर्य यह नहीं जो कि गुरुपाद वद्म प्यास तब तो कृष्ण द्वैतान का जो दास है, लेकिन आज आप लोग देखें आज श्रील महाराज जी को हम लोग बैठा करके उनको पूजा करा के श्रील महाराज की सारे गुरु जितने शिष्य लोग थे सारे महाराज की पूजा की, लेकिन व्यास तो कृष्ण द्वैतान का जो व्यास है, लेकिन हम फिर अपना गुरु जी को ही क्यों हम आज पूजा किए हैं। इसलिए जो व्यास पूजा है, व्यास पूजा का तात्पर्य होता है विस्तार करना। जिन्होंने जैसे श्रील व्यासचंद्र जी सारे ग्रंथों को उन्होंने विस्तार किया, तो उसी परंपरा में ही अभी जो वह व्यास पूजा पद में जो अधिष्ठित जो हमारे गुरुपाल वद्मा उसी भी व्यास जी का काम को अभी भी निभाते हैं, अभी भी उसी आसन पर बैठ करके वो कार्य को संचालन करते हैं, वो कर्तव्य को ठीक ठीक रूप में वो निभा रहे हैं। इसलिए आज हम लोग उसी परंपरा में आए हुए श्रील गुरुपाद वद्म को हम व्यास गति पर बैठा करके हमने उनको पूजा किया है। कल श्रील महाराज जी इसी विषय को वर्णन भी बता रहे थे। व्यास पूजा यह नहीं गुरुपाद वद्म स्वयं व्यास गति पर बैठ जाए और सारे शिष्यों को पूजा ग्रहण करे। महाराज कल जी बात को बता रहे थे हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वे विभिन्न ग्रंथों से उन्होंने सप्त व्यास सप्त पंचकम सप्त पंचकम
पंचकम है
सप्त पंचकम, इसलिए उन्होंने सप्त पंचकम विभिन्न ग्रंथों से उन्होंने उद्धृत करके उन्होंने ये हमारे अति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भी ये व्यास पूजा आने पर गुरु उसको अनुष्ठान करते थे। हम भी श्रील महाराज जी का आविर्भाव तिथि पर श्री वृंदावन धाम वृंदावन में भी हमने उसको अनुष्ठान उसको भी हमने पूजा किया था। जिसमें पहले होता है श्री गुरु पंचकम। श्री गुरु पंचकम में गुरुदेव, परम गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव, परमेश गुरुदेव, परम परमेश गुरुदेव की पांच है। और उसमें श्री आचार्य पंचकम में रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार, उसमें ऐसे पांच आते हैं। और उसमें श्री सनक पंचकम में जैसे श्री सनक, सनातन, सनातन, सनत कुमार, ये लोग उसमें आते हैं। और जो श्री कृष्ण पंचकम में वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न, अनुरुद्ध करके वहां भी ऐसे पांच आते हैं। और श्री पंचतत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद, उस पर भी पांच आते हैं। श्री गुरुपाद पद्म तक इसी जगत में ये जो भक्ति धारा आई है अभी तक, कहते कैसे आई है, कहते इन लोगों को माध्यम से ही आई है। इसलिए इन लोगों को चरण में हम लोग ऋणी है। इसलिए व्यास पूजा का दिन श्री गुरुपाद पद्म अपना शिष्य वर्ग को लेकर के ये सारे गुरु परंपरा को ही पूजा करते हैं। ये पूजा करने पर अब अपना गुरुपाद पद्म को पूजा करते हैं। उनको जो शिष्य लोग यह चीज को देखते हैं, हमारे गुरुपाद पद्म कैसे ये गुरु परंपरा को पूजा कर रहे हैं, और वह परंपरा पूजा दर्शन करके फिर उनको क्या शिक्षा मिलता है। जैसे हमारे गुरुपाद पद्म संपूर्ण हमारे गुरु परंपरा को पूजा करते हैं, उनका ऋणी समझते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य होता है हम भी अभी तक ये जो भक्ति के धारा अभी तक हमारे गुरुपाद पद्म तक आया, और वो गुरुपाद पद्म वो भक्ति को हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम भी श्री गुरुपाद पद्म चरण में हम भी ऋणी है। इसलिए हम लोगों को भी उसी अनुरूप गुरु जी के चरण को पूजा करनी चाहिए। इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उनका आदर्श को लेकर के फिर गुरु जी को चरणों को पूजा करते हैं। इसलिए आज वो व्यास पूजा है। कहते व्यास पूजा का तात्पर्य क्या है, क्या दो माला ले आए 100 रुपया, नहीं तो 1000 रुपया ले आए, नहीं तो कपड़ा ले आए, छतरी जूता चप्पल ले आए और गुरु जी को चढ़ा दिया, यही क्या व्यास पूजा है? इसको ही क्या व्यास पूजा कहते हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते नहीं, ये व्यास पूजा नहीं है। इसलिए व्यास पूजा जैसे हम गुरु जी के चरण में पुष्प लाकर गुरु जी के चरण में चढ़ाते हैं, पुष्प का एक नाम होता है सुमन। सुमन पुष्प ही क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वो सुमन है। सुमन मतलब होता है उसका मन उत्तम मन है। तब तक ये व्यास पूजा नहीं है जब तक शिष्य संपूर्ण रूप में अपना कर्तृत्व अभिमान को छोड़ करके निष्कपट रूप में जब तक गुरु जी के चरण में संपूर्ण शरणापन्न नहीं हो जाता है, विकृत गोरु नहीं हो जाता है, तब तक इसको व्यास पूजा नहीं करते। इसलिए व्यास पूजा का असली तात्पर्य है दो फूल चढ़ाना, गला में माला देना, ये नहीं। प्रभुपाद कहते हैं व्यास पूजा वह व्यास पूजा जिस दिन संपूर्ण रूप में गुरु जी के चरण में निष्कपट रूप में शरणापन्न होकर के उनको उपदेश को उनको उपदेश किया है। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, उनको मूल गुरु जो रूप गोस्वामी के लिए बताते हैं, श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वदानम। इसलिए मूल गुरु जी के चरण में अर्पण करते हुए कहते हैं, कहते गुरु जी का इच्छा किया है, गुरु जी को इच्छा पूर्ण करना ही यही व्यास पूजा है। अभी गुरु जी का क्या इच्छा है, उनको इच्छा हुआ है श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापितम जेन भूतले, जिन्होंने श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का जो मन अभिष्ट है उसको जगत में जो स्थापन किए हैं। कहते महाप्रभु का मन अभिष्ट क्या है, साधारण रूप में महाप्रभु का मन अभिष्ट है पृथ्वी पे आशीजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे वर्णा। ये महाप्रभु का मूल आदेश है, सारा विश्व ब्रह्मांड में मेरे वाणी को, मेरी कथा को सारा दुनिया में प्रचारित हो। कहते गुरुपाद पद्म, कहते वह जो मन अभिष्ट गुरु जी का है, कहते यो गुरु जी का जो मन अभिष्ट को सारा दुनिया में प्रचार करना। प्रभुपाद कहते अंतिम रूप में क्या आपका मन अभिष्ट है, महाप्रभु का। कहते महाप्रभु का अंतिम रूप में उन्होंने जो रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दिया है, और रूप गोस्वामी को जो शिक्षा है और रूपानुभव धारा में आकर के, और रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे हम वो रूपानुभव को प्राप्त करके जो महाप्रभु जगत में अनर्पित चरण चिरात करुणया वतीर्ण तलौ समर्पित गुरुनत उज्ज्वल रसान सभक्ति श्रियम। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो जगत में अनर्पित चरण चिरात जो प्रेम है, जो उन्नत उज्ज्वल रस मुझे देने के लिए आए थे, ये महाप्रभु का मनोभीष्ट है, यही असली मनोभीष्ट है। इसको रघु गोस्वामी ने स्थापित किया। अब रूपानुगत तो क्या चीज है, इसको रघुनाथ दास गोस्वामी अपना विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में स्थापन करते हैं। उनको जी ये मनोभीष्ट है, प्रभुपाद जगत इनके ही जो मनोभीष्ट है, यह मनोभीष्ट को जगत में जो गुरु जी का अनुगत व्यवहार करके सर्वत्र प्रचार प्रसार करते हैं, यही गुरु जी का मनोभीष्ट है। इसलिए अगर यह चीज को अगर हम कर पाए तो यही आज श्रील गुरु व्यास पूजा, यही असली व्यास पूजा है, इसको व्यास पूजा कहते हैं। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भी, इसलिए जब तक हम सदगुरु के चरण में हम शरणापन्न नहीं होते हैं, इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने ईश्वरपुरी के चरण में उन्होंने समर्पित किया। संसार सागर है ते उदाहरण मोरे यही देह समर्पित तुम्हारे, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कहते हैं ईश्वर कृपा ये देह को आप चरण में संपूर्ण रूप से हमें समर्पण कर दिया, इसलिए ये भव सागर से संसार के समुद्र से मेरे को कृपा करके आप उद्धार कीजिए। इसलिए महाप्रभु भी यह चीज को स्वयं भगवान होते हुए भी स्वयं गुरु जी का चरण में संपूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, हो करके उनके चरण में शरणापन्न होते हैं। इसलिए आज यही व्यास पूजा है, आज का दिन श्री सनातन गोस्वामी का, आज का दिन श्री तिरुभक्ति की है। अभी लोग हम लोग विभिन्न वक्ताओं को मुखारविंद से सनातन गोस्वामी का विभिन्न तरह से उनका शिक्षा वैशिष्ट एवं जीवन चरित्र को पढ़ने हम लोग श्रवण कर रहे थे। क्योंकि जो सनातन गोस्वामी है तथा जितने शास्त्र ग्रंथ उपनिषद है वहां पर विशेष पूर्वक तीन वस्तु की विवेचना किया गया, एक संबंध है और एक अभिन है और एक प्रेम है। जितने ग्रंथ में यही तीन चीज भी हमको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो संबंध है, ये संबंध देव का जो आचार्य है ये सनातन गोस्वामी, और ये उनको जो ठाकुर जी कौन है ये मदन मोहन है। इसलिए सनातन गोस्वामी इनका नाम ही सनातन है। जब तक हमारे संबंध पक्की नहीं होगी तब तक हमारे भजन भी पक्का नहीं है, इसलिए संबंध पक्की होनी चाहिए। इसलिए कहते हमारा जो संबंध देवता कौन है, कहते मदन मोहन है। कहते मदन मोहन ही क्यों हमारा संबंध का देवता है, कहते उनका नाम ही मदन मोहन है। मदन मतलब होता है कामदेव है, जो कामदेव को भी जो मोहित करते हैं। इसलिए सारा दुनिया में जितने जीव है ये जो माया की चक्कर में हम जो पीस रहे हैं इसका मूल कारण क्या है, कहते कामदेव, ये कामदेव मूल है। और उनको जो ठाकुर जी कौन है, कहते मदन मोहन है, मदन को जिन्होंने मोहित किया है। अगर ये मदन मोहन के चरण में इसका संबंध उनको जुड़ जाए, कहते ये संबंध बड़े छूटने वाले नहीं है। इसलिए घंटे कला में हम श्रवण कर रहे थे ये मदन मोहन में कितनी आकर्षणीयता है, कहते आत्मा राम अपि गणाकर्षी आत्मा रामस्य मुनयो दीर्घंथमिरुक्रमे। इसलिए उनका अंदर में इतनी आकर्षणीयता है, उनका अंदर में आत्मा राम व्यक्ति को भी वो बलात् आकर्षण करते हैं, अपना तरफ में खींचते हैं। इसलिए सनातन का नाम क्या है, कहते सनातन गोस्वामी है। सनातन मतलब कहते सदा तन, सदा मतलब हर समय, तन मतलब होता है प्रकाश, हर समय जो प्रकाश भी है। इसलिए हम लोग सनातन धर्म है, हम हिंदू धर्म नहीं है, हम क्रिश्चियन मुस्लिम धर्म नहीं है, क्योंकि ये धर्म बदल जाएगा, शरीर परिवर्तन होने पर ये धर्म भी बदल जाता है, लेकिन जो सनातन धर्म है वो कभी नहीं बदलता है। इसलिए इनका नाम ही सनातन गोस्वामी है, और इनका जो ग्रंथ है, इनका जो अवदान है, इनका जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, कहते ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ है। कहते जो बृहद भागवतामृत ग्रंथ को श्री सनातन गोस्वामी, जितने गोस्वामी को पहले इन्होंने ये ग्रंथों को प्रकाशित किया है, कहते यह ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी वहां पर दो चरित्र का विवेचना किया। एक चरित्र है वहां पर दिखाया, जब तक सनातन गोस्वामी के ग्रंथों को हम अध्ययन नहीं करते हैं तब तक हम लोग कभी भी शुद्ध भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं भक्त तो भक्त है, जो भगवान को भजन करते हैं वो भक्त है, लेकिन भक्त कितने तरह के होते हैं, लेकिन उसमें सर्वोत्तम भक्त कौन है। इसलिए इस चीज को श्री सनातन गोस्वामी प्रिय भागवत में प्रार्थना करते हैं, पहले वो ज्ञानी भक्त बताते हैं, फिर बताते हैं शुद्ध भक्त, प्रेमी, प्रेमापर प्रेमा, दूर भक्त, ये पांच तरह का भक्त का नाम लेते हैं। अभी महाराज का जो गोविंद मंदिर में उन्होंने इस विषय पर लेक्चर दिया था वो ग्रंथ को प्रकाशित हुआ है, इसलिए आप लोग अगर समझ में चाहते हो वो ग्रंथ आप लोग खरीद लीजिएगा। और वहां पर ज्ञानी भक्त कहते हैं इसको, वहां पर कितने सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं। और उनसे श्रेष्ठ भक्त है शुद्ध भक्त है जिसको अम्बरीश महाराज में लिया गया, और ज्ञानी भक्त में प्रह्लाद महाराज और हमारे भीष्मदेव को उसमें लिया गया, और शुद्ध भक्त में अम्बरीश महाराज को लिया गया, और प्रेमी भक्त में हनुमान को लिया गया, और प्रेमापर भक्त में पांडवों को लिया गया, और प्रेमातुर भक्त में वो उद्धव को लिया गया। जैसे गोपियों का नाम तो आया ही, जैसे गोपियां कोई बच्चे नहीं है, गोपियां तो भगवान श्रीमती राधा रानी की जितने कायदीय स्वरूप है, इसलिए उनका भक्ति तो उद्धव नहीं कर्तव्य हम श्रवण किया था, उद्धव ही ब्रज गोपियों की प्रेम की सर्वोत्तम सर्वोत्तमता उनका झंडा उन्होंने पिलाया श्री उद्धव जी। इसलिए ये बृहद भागवत ग्रंथ ग्रंथ ने यह चीज भी बताया, और एक चीज भी बताया, गुरु भागवत पद में हमको जो कृष्ण मंत्र प्रदान किया है वो कृष्ण मंत्र जप करने पर ये मंत्र का फल कहाँ तक है। साधारण व्यक्ति कहते स्वर्ग, हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से ऊपर कोई जानते नहीं, लेकिन उसको ऊपर में काम हो जना तप सत्य उसको बाद में काम ब्रह्मलोक आसीक लोक का वैकुंठ धाम है ये कहा, फिर अयोध्या है, फिर मथुरा द्वारका मथुरा, लास्ट में गोलोक वृंदावन तक, जिस जब तक ये जो गुरु जी हम गोपाल मंत्र प्रदान किया उसका जो स्थान है एकदम तो गोलोक वृंदावन उसका स्थान है, ये मंत्र का फल है। और जीव जब गोलोक वृंदावन में पहुंच करके जब तक राधा रानी की पालना दासी पद को प्राप्त नहीं करता है तब तक जीव का सर्वोत्तम प्राप्त नहीं है। इसलिए अगर वह ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा तो ठीक है स्वर्ग नहीं तो वैकुंठ चले जाएंगे, उसके ऊपर तो कोई जानते नहीं, नहीं तो अयोध्या जाएंगे उसके ऊपर कुछ जानते नहीं। लेकिन ये कृष्ण मंत्र हमको कहाँ तक पहुंचा सकता है, ये मंत्र शक्ति क्या है, ये मंत्र में जप करने पर मंत्र हमको क्या प्रदान कर सकता है, इसलिए सनातन गोस्वामी को ग्रंथ में वर्णन किया। और इसी ग्रंथों को आधार करके बाद में जितने ग्रंथ बना गोस्वामी ने जितने ग्रंथ बनाए इसी ग्रंथों को आधार करके सारे ग्रंथ बनाए, विशेष करके सनातन गोस्वामी बृहद भागवत ग्रंथ में एक रसायन एक चैप्टर दिया है जिसको महाराज बड़े तीन तक उन्होंने इसी विषय पर विवेचना किए हैं। उसका नाम वास्तविक रूप में टीका का नाम उसका नाम रखते हैं रसायन है। वो रसायन में चुने चुने हुए श्रीमद भागवत ग्रंथ का बड़े सुंदर सुंदर जो श्लोक है वो श्लोक को वहां पर उद्धृत करके वहां पर रसायन को ऊपर में वहां पर ब्रज भक्ति की विशेष रूप में वहां पर विवेचना किया गया है। ब्रज भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति किसकी है, जितने भक्ति भक्ति है लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति ये ब्रज गोपी को ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति ही है और इसको ऊपर में कोई भक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये रसायन नाम ही उसका नाम रखते हैं रसायन नाम रखा है। इसलिए जब तक ये सनातन गोस्वामी का ये रसायन को हम नहीं पढ़ते हैं तब तक रसमय भक्ति में कभी हम प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर रस में प्रवेश करना तो सनातन गोस्वामी की ये रसायन को हमको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो केवल तुलसी कंठी तिलक लेने पर हम गुरु जी का चला है क्या चला है, हमने तो गुरु जी से हरिनाम लिया दीक्षा मंत्र ले लिया लेकिन शास्त्र ग्रंथ में कुछ अध्ययन नहीं पढ़ते नहीं कुछ जानते नहीं तुम गुरु जी का सही शिष्य नहीं हो। इसलिए अगर हम गुरु जी का सही सही शिष्य है तब बनेंगे जब उनको शिक्षा को जीवन में हम अपनाएंगे तभी हम सही शिष्य बनेंगे। केवल तिलक कंठी ले लिया साल में आकर के एक बार गुरु जी को चरण में पूजा करके बस और कोई मतलब नहीं, इतना आसानी नहीं है। इसलिए गुरु जी को गुरु जी का शिक्षा को जब तक जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए गुरु जी को चरण में आकर के वो ग्रंथ को अध्ययन करना और अध्ययन करके उसी अनुरूप भाव को प्राप्त करने के लिए प्रयास हमको करनी चाहिए। इसके लिए कठोर साधन की जरूरत है। इसलिए सब नित्य परिकर होते हुए भी उन्होंने संख्या पूर्वक नाम दान नदी काला अवसान किंतु निद्रा आहार विहार काल विदित हो चात्यंत दिन चलो राधा कृष्ण पुनः स्मृते और धुरीमान सम्मोहित हो वंदे रूप सनातन प्रभु युगो श्री जीव गोपाल को नित्य सिद्ध परिकर होते हुए भी संख्या पूर्वक नाम करते हैं संख्या लोग वैष्णव का नाम लेके प्रणाम करते हैं संख्या रोज कुछ स्तुति स्तव वंदना करते हैं वैष्णव के उद्देश्य में प्रणाम चढ़ाते हैं ये जो भक्ति की अंगों को जागृत करते हैं। इसलिए कभी चाहना कभी अभिमाना कभी महापुरुषी है, हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वे लोग हम लोग के लिए जो शिक्षा दिए, जो उपदेश दिए ऋतु जीवन में कभी गुरु वैष्णव का आनंद करके ग्रहण करके जीवन में अभी हम उतार करते हमारा जीवन
अभी सनातन गोस्वामी जी के संबंध में श्रीमान वन महाराज जी ने बहुत सुंदर बतलाया। इसके बाद में देवी सविता ने ये बहुत अच्छी तरह से उनके उपदेशों के संबंध में वो उसने बतलाया। अंत में श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी जी ने सनातन गोस्वामी के संबंध में बहुत ही अच्छे अच्छे उपदेश सुनाए, बतलाया। इन्होंने व्यास पूजा का तात्पर्य यह नहीं है कि गुरु अपनी पूजा ग्रहण करे, अपने जन्मदिन में या व्यास पूजा के दिन में जो आचार्य या गुरु होता है वो अपने गुरु की और गुरु परंपरा की पूजा करें, गुरु भाइयों का आदर सम्मान करें और छोटन के प्रति स्नेह इत्यादि भी स्नेह से उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं दें। जो गुरु ये नहीं करता, शिष्यों का सम्मान तो लेता है किंतु गुरु वैष्णव को आदर नहीं करता, वो व्यास पूजा नहीं है। दूसरी बात, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, रूप गोस्वामी ने जैसे चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक इच्छा को उन्होंने परिपूर्ण किया, ये प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य यह नहीं है कि गुरु के नाम पर दीक्षा करके और सब कुछ अपने आत्मसात करता, ये गुरु की अभिलाषा है। कहाँ अपना बतलाया कि अपना सुंदर मन गुरु जी के चरणों में देकर और वो गुरु जी क्या करेंगे, हमारे अच्छे मन को पवित्र मन को राधा कृष्ण के चरणों में न्योछावर करें। जो वो कोई शिष्य नामधारी व्यक्ति गुरु के नाम पर कुछ एकत्र करके और गुरु को न दे करके आत्मसात कर जाता है तो वो और इच्छा क्या पूर्ण करेगा, जो सारे विश्व में अपने गुरु की महिमा राधा कृष्ण की महाप्रभु की महिमा का विश्व में प्रचार करेगा, जैसे रूप गोस्वामी ने किया, क्या करेगा। पैसे के प्रति उसका मोह नहीं गया, धन के प्रति भी जिस शिष्य का मोह नहीं गया वो शिष्य नहीं है, वो बल्कि दानव है, मानव नहीं। ऐसे शिष्य लोगों की जो क्या गति होगी मैं नहीं जानता। कहां सी चैतन्य मनोभीष्ट, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के गुरु भी हैं और आराध्य भी हैं। गुरु की दृष्टि से गुरु में आत्मसमर्पण होगा और गुरु की मनोभीष्ट को पूर्ण करेगा तब तो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति होगी। यदि रूप गोस्वामी की अपने गुरु के प्रति निष्ठा नहीं होती तो सारे विश्व में महाप्रभु जी की इच्छा क्या है, उसको कैसे प्रकाश कर सकते। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है, सारे विश्व में महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार हो। महाप्रभु जी की वाणी क्या है, रूप गोस्वामी ने बतलाया, प्रत्येक जीव भगवान का दास है। दास होने पर भी विशेष कृष्ण के साथ में संबंध है, चैतन्य महाप्रभु वही देने के लिए आए। स्वरूपतः जीव में राधा दास्य होने का भी अधिकार है, राधा जी की दासी होने का भी अधिकार हो सकता है। गुरु उस चीज को ग्रहण करके समझ करके शिष्य को वही भाव देते हैं, इसी का नाम गोपाल मंत्र है। गोपाल को ही मदन मोहन जी को, गोविंद को और गोपीनाथ संबंध है, मदन मोहन अभिधेय गोविंद जी और गोपीजन वल्लभ ये गोपीनाथ जी हैं। विभिन्न विभिन्न इसके स्तर हैं, शिष्य को गुरु जी ये देते हैं। चैतन्य महाप्रभु का कहना है अनर्पित चरिं किरात करुण्यावतीर्ण कलौ समर्पयितुं उन्नत उज्ज्वल रस। जीव को उन्नत उज्ज्वल रस उसकी श्री, श्री माने क्या, जैसे कोई लता होती है उसके पत्ते होते हैं, उसकी मंजरी होती है, उसी प्रकार से राधा जी के भावों की कुछ मंजरियां होती हैं। मंजरियां न रहे और पत्ते रूपी सखियां न रहे तो राधा जी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इसलिए ये मंजरियां का भाव जो है, जो राधा कृष्ण की सेवा करती हैं, राधा जी के अनुकूल हो करके, इस भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, देने के लिए। और ऐसी भी कुछ चीज थी जो देने के लिए नहीं थी, वो लोग राधा जी का भाव कृष्ण मेरे प्रति कैसा है, कैसे वो रस का आस्वादन करती हैं और उस आस्वादन को करके कैसे सुखी होती हैं, ये देने की बात नहीं, ये लोभ की बात थी। कृष्ण जी विशाखा जी से मंत्र लेकर के वहां गोदावरी में इसको कुछ गंभीरा में आस्वादन। इसलिए कृष्ण के यहाँ पर शिक्षा गुरु विशाखा जी हैं और आराध्य कौन है, श्रीमती राधिका जी का प्रेम है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ये आए, इसको कौन प्रतिष्ठित किया, सुलरूप गोस्वामी। तो शिष्य को कर्तव्य ये है, जो एक पैसा नहीं गुरु को दे सकता है, साधारण ये जगत का मान सम्मान नहीं दे सकता है, पूर्ण अनुगत्य नहीं दे सकता, ये क्या चीज करेगा, उसके अंदर में स्फूर्ति भगवान की कैसे आएगी, गुरुदेव की कृपा उसमें कैसे आएगी, जो गुरु जी का बचार ही नहीं मानता। एक बात समझेंगे, जो बहुत ऊंचे कुल में आए हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको भक्ति होना बड़ा भारी कठिन है। जन्म ऐश्वर्य श्री भी एधमान मदह, इसे मद होता है, मैं बहुत विद्वान हूं, गुरु जी तो संस्कृत पढ़े नहीं है इतने, मैं तो धड़ाधड़ संस्कृत में बोल सकता हूं, मैं गंभीर विचारों को मैं समझता हूं, कहां भक्ति, गुरु जी के भावों को कैसे तुल लाएगा। प्रेम से उनके आंखों में अश्रु बहने लगते हैं, अपने गुरु के लिए सब कुछ दे सकते हैं, ये कहां तुम कर सकते। इसलिए जितने भी पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं उनको भक्ति होना बड़ा भारी कठिन, मध्यम व्यक्तियों को होता है, जिसका अभिमान नहीं है उनको भक्ति। तो अधिक पढ़ लिख करके भी यदि सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा हो, अद्वैताचार्य हैं, शिवास पंडित जी हैं, गदाधर पंडित जी हैं, ऐसे रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, कैसे तीन से भी दीनहीन अपने को मानते हैं, अपने से एकदम दीनहीन। जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते सनातन गोस्वामी, क्यों, मैं अपवित्र हो गया, मुसलमानों के साथ साथ में रहूं, कभी अपवित्र हुए नहीं, तो कभी ये दीनता है। तो जो अपने को महान समझता है, विद्वान और बड़े उच्च कुल का, उनको भक्ति कभी कदापि नहीं, जब गुरु निष्ठा ही नहीं रही तो उनको क्या भक्ति। ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति के साथ में जो रहेगा उसकी रही सही भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का संग विषधर सर्प के समान छोड़ करके शुद्ध भक्तों के साथ में जो गुरु की सेवा करते हैं उनका साथ। उनके साथ में इतना भी संबंध रहा वो विष उसमें प्रवेश कर जाएगा। कॉलरे का रोगी के पास जाएगा, दूर भी रहेगा, उसके श्वास प्रश्वास से वो कॉलरे का रोग मरेगा, समझ नहीं पाएगा कि कैसे हो गया। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का संग छोड़ देना चाहिए यदि भक्ति चाहता है। तब रूप गोस्वामी की ऐसी भावना आएगी, सनातन गोस्वामी की ऐसे भावना आएगी। सनातन गोस्वामी के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, जैसा कि बेटी ने बतलाया, मैं नहीं चाहता था शुद्ध भक्ति, बैराग्य युक्त प्रेम रसमय ये भक्ति ब्रज की नहीं चाहता था, और उन्होंने जोर करके खिला दिया। ये गुरु करता है, छल से, बल से, कल से, जैसे हो, शिष्य को गुरु देता है, किंतु अनाधिकारी को नहीं देगा। अर्थात गुरु निष्ठा जिनको नहीं है नहीं देगा, भले ही निरक्षर हो, अपढ़ हो, सब कुछ से हीन हो विद्या से, उसको दे देगा, किंतु जिसको अभिमान है, गुरु निष्ठा नहीं है, उसको नहीं देगा। इसलिए गुरु निष्ठा कभी भी नष्ट न हो, इस पर ध्यान रखना। सनातन गोस्वामी की एक और शिक्षा है विशेष, महाप्रभु जी ने उनको बतलाया। एक बहुत ही दरिद्र व्यक्ति था, उसके घर में एक दिन एक सर्वज्ञ आया। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला, भूत भविष्य। पूछा, जैसे तुम दरिद्र तो नहीं हो? मैं तो बहुत दरिद्र हूं, खाने पीने के लिए भी मेरे घर में कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे पिताजी बड़े धनी थे, अगर, और उन्होंने तुम्हारे लिए सुरक्षित जमीन में गाड़ रखा है, अतुल संपत्ति, धन संपत्ति, किंतु वो विदेश में रहने से, किसी कारण से, और तुम छोटा रहने से तुमको बतला नहीं गए, हठात मृत्यु हो गई, तो वो तुम्हारे घर के अंदर में ही वो गड़ा हुआ है, तुम जानते नहीं, इसलिए दरिद्र अपने को समझ रहे हो। उन्होंने कहा जी देखो, तो उन्होंने कहा जी हमारे जी कहां वो छिपा हुआ है, देखो उत्तर में मत खोदना, जमीन घर में ही है, उत्तर वाले घर में मत खोदना, वहां पर भीम, नहीं भीम और जक्षिम है, दक्षिण में भीमरूल है, दक्षिण दिशा में भीमरूल माने क्या, ततैया माने पीले और लाल, वो काट देने से विष हो जाता है, मुख खुल जाएगा, और विशेष करके वो ये मुख पर ही आक्रमण करते हैं, बड़े विष होता है, ये काट देंगे तुम्हें, उधर मत, उसमें बहुत से निकलेंगे, और पश्चिम में जक्ष है, कोई जक्ष है, वो निकल जाएगा तुम्हें, मतलब उधर में मत जाओ, और रह गया पश्चिम में, तो उसमें भी अजगर सर्प है, निकलेगा और डस देगा और खा जाएगा। हाँ, पूरब की तरफ के घर में चलो, थोड़ा सा खोदना, बस निकल आएगी, सोने की हंडी में रत्न और जवाहरात भरे पड़े हैं, ले गया बतला जी यहां पर खोदो तो, और खोदा, देखा क्या, थोड़े में ही असरफियों से भरा हुआ एक सोने का घड़ा उसमें से निकला, और तब वो मालूम माल और धनी हो गया। क्या तात्पर्य, ये रूप का अलंकार है, तात्पर्य यह है गुरु जी अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, शिष्य बड़ा दीन ही कंगाल है, दुख में बिल बिल आता है, यदि अभी नहीं बिल बिल आता है तो पीछे बिल बिल आएगा, बूढ़ा हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, हजम नहीं होगा, और मृत्यु अवश्यंभावी दिखेगी, और कोई कुछ सहायता नहीं करता, और कुछ भी नहीं लेकर के जा, उस समय असहाय दीनहीन हो जाता है। आजकल के लड़के लड़कियां अपने माता पिता को भी कुछ नहीं मानते हैं, उनका अपमान करते हैं, दिन दुखी बना रहता है। कोटि कोटि जन्म जन्मांतरों से हम भगवान को भूल करके घूम रहे हैं, कभी गधे भेड़े सूकर कूकर, कभी देवता, कभी कुछ, अभी तक हम लोगों को सुख शांति नहीं मिली, और अभी हम सुख शांति खोज रहे हैं। गुरु कहता है, अरे तुम दरिद्र नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने बहुत धन संपत्ति तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। यहाँ पर जीवों का पिता कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण चंद्र जी हैं, महाप्रभु जी हैं। उन्होंने हमारे स्वरूप में ही इसका गठन करके वो सारा प्रेम संपत्ति वो सब हमारे हृदय में दे रखा है। योग से, कर्म से, तपस्या से और सब भक्तियों से ये नहीं मिलेगा, थोड़े से परिश्रम से। क्या थोड़े से? मुसलमानों जैसे नमाज पढ़ने में भी तो उठना बैठक कसरत करना पड़ेगी, हाफ जाएगा। और क्रिश्चियनों में भी ऐसा ही। और इसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बड़े प्रेम से गाओ। अनजान में हो, जान में हो, जैसे भी हो, भगवान का नाम एक बार भी यदि हृदय से निकल गया तो वो बीज हो जाएगा और तुमको संसार सागर से पार कर देगा। भगवान ने तुम्हारे स्वरूप में ये धन रख दिया है तुम्हारे लिए, तुमको पता नहीं है। इसलिए कभी तुम कर्म करता है, कभी ज्ञान की तरफ में जाता है, कभी योगी बनता है, कभी ज्योतिष विद्या की तरफ में जाता है, कभी इधर उधर स्कूल कॉलेज में भागता है, उसे नहीं सूझा। कैसे होगा? हरिर्नाम नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। इस नाम में ही सारा रत्न प्रेम भरा पड़ा है। कृष्ण नाम वहां अनेक स्वरूप, जसोदानंदन आनंद वर्धन नंद तनय रस भरा पड़ा है। गुरु जी के अनुगत्य में ब्रज में रहकर, यदि ब्रज में नहीं है तो ब्रज का भाव लेकर उसमें रह कर और रसिक तत्वज्ञ वैष्णव के अनुगत्य में निरंतर तुम यदि भजन करेगा राधा कृष्ण का तो यह प्रेम मिल सकता है। यही उस सब उपदेशों का सार है। सनातन गोस्वामी के शिक्षा का भी यही सार है। इसलिए इस शिक्षा को लेकर के नाम को स्वयं राधा कृष्ण का स्वरूप मानो, उनसे कम मत मानो। जैसे कृष्ण हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ये नाम उनसे और सहज रूप में हमारे अपराधों की तरफ में ध्यान न देकर के भी पूर्ण कर सकता है। किंतु एक बात याद रखो, यदि किसी प्रकार से किसी ने वैष्णव की निंदा की, गुरु की अवज्ञा की, तो वो जन्म जन्मांतर उसकी रही सही भक्ति, यहाँ तक कि स्वरूप में रहने वाली भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए बड़े सावधानी के साथ न रहना, गुरु जी से चोरी मत, बेईमानी मत करना, अपने हृदय को खोल दो, उनके सामने रख दो। जैसे कोई रख देते हैं कि मैं ऐसा हूं, बुरा हूं, भला हूं, आपका हूं, तब तो बेड़ा पार। और यदि ऐसी निष्ठा नहीं रही तो कभी भाव सागर से पार होने की संभावना नहीं। गुरु इसी चीज को देता है। गुरु नहीं कहता कि हमारे लिए पैसा लाओ, हमारे लिए कपड़े लाओ। वो गुरु नहीं, गोरु है। गुरु माने मूर्ख, जिसको कोई बुद्धि नहीं है। और सदगुरु क्या चाहता है? सुमन चाहता है। सुमन माने उसका मन। तुम हमें मन दो, इस मन को हम पवित्र करके, कोमल करके, सुगंधित करके राधा कृष्ण के चरणों में तुम्हें अर्पित। ये सामर्थ्य जिस गुरु को है वो तो गुरु है, और ये सामर्थ्य नहीं है तो वो क्या करेगा? गो, गो में भी क्या है? गोखर। गोखर किसको कहते हैं? जानवरों में भी गधा, गधा माने बेवकूफ। इस प्रकार से समझो और भजन करो। आज रात हो गई, अब हम भी दिन भर के थके हुए हैं, वैष्णव लोग भी बड़े परिश्रम किए हैं, आप लोग भी थके हैं, इसलिए आज यहीं को समाप्त करता हूं। कैन यू गो सुंदर स्पीक इन इंग्लिश व्हाट आई हैव टोल्ड? देयर इज नन कौन हु संक्षेप में बोल दो। वो कहां गया? क्या नाम? माधव।
व्यास पूजा इज नॉट दैट गुरुदेव और आचार्य हिमसेल्फ परफॉर्म हिज ओन पूजा थ्रू हिज डिसिपल्स बट द रियल मीनिंग इज दैट ही परफॉर्म द पूजा ऑफ द होल गुरु परंपरा एंड सेट्स एन एग्जांपल फॉर हिज फॉलोअर्स नॉट ओनली दैट ही ऑल्सो गिव्स रिस्पेक्ट टू हिज गॉडफादर्स एंड gives instructions with affection to his disciples. So this is the real way of performing Vyas Puja. So Gurudev mentioned that real Vyas Puja is performed by disciples as mentioned Sri Chaitanya Mahaprabhu Sthapitam Yena Bhutale as when the disciple helps him to establish the innermost desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This
world.
That is Radha Dasyam. And the Sarupa of the Jiva has this capacity in his Sarupa. And this is what Gurudev tries to give to his disciples. This is the inner meaning of Gopal Mantra. That it has everything, Madan Mohan, Govind, and Gopinath, everything combined in it. And particularly the Sri. Of Unnat Ujjwal Ras, the beauty of Radharani's mood, which is seen in the Manjaris. So this is what Sri Chaitanya Mahaprabhu gave to this world. And this is what Sri Rupa Goswami established in this world. And he wanted to give to the whole Jeevas, all the Jeevas. And there is some purpose for which Chaitanya Mahaprabhu himself came, and that was his own purpose to relish the mood of Srimati Radharani, and that was not to be given to the whole world. Then Gurudev mentioned that without having Guru Nishtha, one cannot fulfill the innermost desires of Sri Chaitanya Mahaprabhu. If a disciple, he cannot even give a single kasha to the Gurudev, although he collects all the diksha on his Guru's name, but doesn't give to his Guru, then he cannot, he is unqualified to fulfill the innermost desire of Gurudev. What? Furthermore, if someone is associating with a disciple who has no Guru Nishtha, who is stealing the money of Gurudev, or who is acting against Gurudev, then also by such association, his bhakti will be finished. We have to be very careful about this. Then Guru mentioned one pastime wherein Sri Mahaprabhu gave an instruction to Sanatana Goswami. He said that there was one man and he was very upset that he is very poor and he has nothing with him. Then he said that this one Lala person who came to him and said, look, your father has gone away from your home and he has hidden some money, some treasure in this home. But you should try to find it out. But in which direction? Don't go in north or south or west direction. Try to find this wealth in the east direction. So the meaning of this is that there are that is hidden. This is like a metaphor, rupa, explaining that how the living entity who is always finding some limitation, some hankering by living in this world, some abhav, some lacking, that he has everything within himself, but he doesn't know how to find it out. North, south, and west directions are compared to the paths of karma, jnana, yoga, etc. But the mindfulness is ishara. This direction is the path of bhakti yoga, particularly the process of chanting the holy name, Hare Krishna mantra. By which Krishna Pada, you can easily find out the hidden treasure which is in the form of prema which is hidden in his heart.
So,
in this way, Sri Gurudev included that we should try to follow the essence, the instructions of Srila Sanatana Goswami and our whole Guru Parampara. Then only our Vyas Puja will be meaningful. We have to give so much. So means beautiful and man means mind. So we should try to make our mind beautiful and that we should offer to Gurudev. Gurudev doesn't need anything, any money, any other money thing from a disciple. He only wants his true man. He wants his simplicity. That disciple should openly open his heart before him that Gurudev. I am like this, I am bad, I am yours. This sort of simplicity is desired from the disciple. Then only he can perform the real Vyas Puja. He can give him the wealth of his heart. Also, with the mentioned that there are four types of people who cannot perform bhajan. Those who are
पान इत्यादि आठ बजे रहने से मेरे लिए अच्छा रहेगा नहीं आ सकेगा दूर का है
आठ बजे आ जाए बिना